हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत के तारा के कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि कमरा अंदर से बंद था। उसे बहुत क्रोध आया। वो गुस्से से लॉक पर घूरने लगा। अचानक लॉक अपने आप खुल गया। विक्रांत ने अपनी आंखों की जादुई शक्तियों का प्रयोग कर लॉक खोला था। वो चुपके से तारा के कमरे में घुस गया। किंग साइज बेड पर पड़ी तारा को देखकर उसका दिल धड़का। वो एक हल्के सफ़ेद कुर्ते में सो रही थी। सोती हुई तारा बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत का मन हुआ कि वो तुरंत ही उसके होठों को चूमे। तारा की खूबसूरती और उसके सफ़ेद कपड़े उसे पिछले जन्म की राधा की याद दिला रहे थे। राधा ने भी सफ़ेद लिबास पहना था, जिसमें उसका आधा शरीर दिखाई देता था। हालांकि तारा के कपड़े ढीले थे और उसका पूरा बदन ढका हुआ था, फिर भी विक्रांत उसे उसी तरह देख रहा था। वो काफ़ी देर तक उसे खड़े खड़े घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसके बगल में जहां अमन सोता था जाने लगा। विक्रांत वहां धीरे से लेट गया। तारा गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उसे अपनी नींद पूरी करना ज़रूरी था। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती तो उसके बच्चों को नुकसान पहुँच सकता था। वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखती थी, इसीलिए वो पूरा आराम करती थी और करिश्मा जी जो भी खाना देती थी वो बिना किसी शिकायत के खा लेती थी। जैसे ही विक्रांत अमन के स्थान पर लेटा, तारा को अजीब सा एहसास हुआ। उस राक्षस के शरीर की गंध उसे परीलोक के रक्षक की याद दिला रही थी। विक्रांत के पास आते ही उसकी गंध उसे एहसास दिला देती थी कि राक्षस कहीं पास ही है। हालांकि वो उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी गंध उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। नींद में ही विक्रांत की गंध पाकर तारा एकदम उठ खड़ी हुई। तारा को उठता देख विक्रांत ने चुटकी बजाई और गायब हो गया। तारा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन उसे विक्रांत की गंध साफ महसूस हो रही थी। वो समझ गई कि राक्षस वहां आया था। तारा ने सोचा कि वो तब तक नहीं सोएगी जब तक अमन नहीं लौट आता। कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तारा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर करिश्मा जी के साथ बिताई जाए। करिश्मा जी ने कहा था कि उन्हें नींद नहीं आती, शायद वो अभी भी जाग रही होंगी। कुछ सोचकर तारा करिश्मा जी के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन कमरे में जाकर देखा तो करिश्मा जी अपने बिस्तर पर नहीं थीं। तारा हैरान हो गई। उसे समझ आ गया कि करिश्मा जी अपने पति को ढूंढने गई होंगी। तारा के दिमाग में एक आइडिया आया और वो जल्दी से कपड़े बदलकर बंगले की छत पर पहुंच गई। विक्रांत अपने कमरे में चला गया और गहरी सांसें लेने लगा। वो वहां से भाग कर आया था और उसे डर था कि कहीं तारा ने उसका इंसानी रूप न देख लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो वो समझ जाएगी कि विक्रांत ही राक्षस का अंश है, फिर वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। उसे एक दिन तारा के सामने आना ही था, लेकिन इतनी जल्दी अपना प्लान खराब नहीं करना चाहता था। उसका एक प्लान था जिसके अनुसार उसे चलना था। पूर्णमासी की रात में अभी वक्त था, तब तक उसे तारा से दूर रहना था। पूर्णमासी की रात वो तारा को पूरी तरह अपना बना सकता था, लेकिन अभी ऐसा करने पर तारा के शरीर में पल रहा बच्चा उसकी जान ले लेगा। लेकिन पूर्णमासी की रात अगर वो तारा से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रात बच्चे की शक्तियां कुछ पल के लिए उसके पास नहीं रहेंगी। लेकिन अगर पूर्णमासी की रात बीत जाने के बाद बच्चे की शक्तियां वापस आ जाएंगी तो वो चार गुना ज्यादा होंगी। ये बात विक्रांत की माँ ने उसे समझा दी थी, इसीलिए वो अभी एक इंसान की तरह तारा का दिल जीतने की कोशिश करेगा और फिर उसे अपना बनाएगा। लेकिन अगर पूर्णमासी की रात से पहले ही वो कामयाब हो जाता है और तारा अपनी मर्जी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका बच्चा मर जाएगा और तारा हमेशा के लिए विक्रांत की हो जाएगी। वो उसे परीलोक में ले जाएगा। विक्रांत अपने प्लान सोचता सोचता सो गया। दूसरी ओर तारा छत पर गई और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके आकाश में उड़ने लगी। ठंडी हवा में आकाश में उड़ना उसे बहुत पसंद था। अमन के जाने के बाद से जो अकेलापन उसे सता रहा था वो अब खत्म हो रहा था। वो खुद को खुश महसूस कर रही थी। जब तारा अपने परों को पाती थी तो वो खुद को पूरा महसूस करती थी। परों के बिना वो अधूरी लगती थी, लेकिन इंसानों के बीच वो पर लगाकर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने अपने परों को अपने लॉकेट में कैद कर रखा था। ये वही लॉकेट था जो उसके कुल देवता ने दिया था। तारा जंगलों की सैर कर रही थी और उसकी नज़र करिश्मा जी पर पड़ी। करिश्मा जी हर रोज की तरह तप कर रही थीं और अपने पति के बारे में जानने की कोशिश कर रही थीं। तारा ने सोचा कि क्यों ना करिश्मा जी से बात की जाए, लेकिन उसने उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। वो जानती थी कि करिश्मा जी अपने पति को पाने के लिए अनुष्ठान कर रही हैं। अगर तारा उनका अनुष्ठान भंग कर देती है तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए तारा ने करिश्मा जी की रक्षा करने का फैसला किया। वो बिना उनकी नज़र में आए उनकी मदद करेगी, ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। वो इस बात पर भी सोचने लगी कि पिछली बार करिश्मा जी ने बुढ़िया बनकर उससे कहा था कि वो पिछले 15 सालों से अनुष्ठान कर रही हैं, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। किसी बहाने से रोक दिया था। आखिर कौन था जो नहीं चाहता था कि करिश्मा जी को अपने पति के बारे में पता चले? तारा इस बात का पता लगाना चाहती थी। उसे यकीन हो गया था कि वो व्यक्ति करिश्मा जी के पति के बारे में कुछ जानता है। कुछ सोचकर तारा फिर से उस बुढ़िया के रूप में आकर करिश्मा जी की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित, जिसकी नज़र आज प्राची पर पड़ी थी, उसके ऑफिस से निकलते ही उसके पीछे हो लिया था। वो आज हर हाल में प्राची को अपना निशाना बनाना चाहता था। जब से वो मल्लिका के शरीर के करीब गया था, तब से उसे किसी औरत की लालसा होने लगी थी। इसीलिए उसने आज प्राची के साथ संबंध बनाने का फैसला किया था। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि प्राची ऑफिस से निकली तो उसके पिता उसे लेने आ गए थे। मतलब साफ था कि प्राची अकेली ऑफिस नहीं आती थी, उसके पिता हमेशा उसे लेकर आते और छोड़कर जाते थे। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे प्राची हर हाल में चाहिए थी। पहले तो उसने सोचा कि क्यों ना प्राची के पिता का खून कर दे और फिर प्राची का अपहरण कर ले, लेकिन वो इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसा नहीं कर सकता था। ऑफिस से कम 200 लोग निकलते थे और उस वक्त वहाँ भारी भीड़ होती थी। अमित के पास कोई रास्ता नहीं था कि प्राची का अपहरण कैसे करे, लेकिन तभी सड़क के किनारे बैठी एक बदसूरत लड़की पर उसकी नज़र पड़ी।